Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जब पांडवों को वनवास हो गया था तो युधिष्ठिर वन में बैठे हुए थे और बिल्कुल ध्यान मग्न थे, परमात्मा की याद में बैठे हुए थे। जब वो ध्यान से उठे तो द्रौपदी उनके पास आईं और उन्होंने कहा कि आप इतना ध्यान करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तो आप भगवान से ये क्यों नहीं मांगते कि भगवान ये जो सारे कष्ट हमारे जीवन में आ गए हैं उन्हें आप दूर कर दीजिए। तो युधिष्ठिर जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं तप इसलिए नहीं करता कि मैं भगवान से सौदा करूं, बल्कि मैं तो तप इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा और सारे संसार का भला हो, कल्याण हो। जैसे हम सामने जो वन दिखाई दे रहा है, जो पर्वतमाला दिखाई दे रही है, उसे देखते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही जब हम तप करते हैं तो भी हमें आनंद की अनुभूति होती है उस ईश्वर से जुड़ जाने के बाद। तो कितनी सुंदर बात है ना, जब कभी हम तप की बात करते हैं तो सचमुच एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और हम पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि ऐसे तपस्वी हुए हैं इस संसार में, हमारे देश में भी। लेकिन जब कोई तपस्वी हमारे सामने हो जिसका जीवन ही तपस्या से बिल्कुल ही जुड़ा रहा हो प्रारंभ से ही, तो सचमुच वो हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। आदरणीय सूर्य भाई जी का जीवन भी तपस्या से जुड़ा रहा है प्रारंभ से ही। 1964 में इनका अलौकिक जन्म ही तपस्या और योग से हुआ। जब ये प्रथम बार यहाँ आए ईश्वरी विश्वविद्यालय में और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सामने खड़े हुए, तब भी ये ध्यानस्थ हो गए और तब से लेकर के इनका जीवन ही योग युक्त रहा है। और मुझे लगता है कि तपस्या की चर्चा लगातार हम करते आ रहे हैं, तो भ्राता जी के तपस्वी जीवन की चर्चा किए बिना ये तपस्या की जो चर्चा है वो संपूर्ण नहीं होगी। तो आइए आज भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं और उनके जीवन से जुड़ी हुई जो सुंदर अनुभव हैं तपस्या से जुड़े हुए, उन्हें आज जानने की कोशिश करते हैं। प्रथमतः अभिनंदन करते हैं भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
थैंक यू
भ्राता जी। बहुत अच्छा लगता है जब एक तपस्या की चर्चा भी होती है और एक जो ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने हैं, आप हैं जिन्होंने पूरा जीवन ही तपस्या में बिताया है, तो अच्छा लगता है कि हम भी कैसे तपस्या को अपने जीवन में लाएं। और मैंने सुन रखा है कि विद्यालय में योगी राज के नाम से आपको जाना जाता है, तो ये भी वास्तव में आपकी तपस्या मूर्त जीवन का ही प्रतीक है। हम जानना चाहेंगे भ्राता जी, ये जो एक लगन थी, आपने खुद अपने अंदर इस लगन की अग्नि को प्रज्वलित किया या फिर तपस्या के महत्व को जानते हुए अपने आप को इस पुरुषार्थ में लगाया?
देखिए, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अनेक महान आत्माओं ने तपस्या की। पहले तपस्वी, सर्वश्रेष्ठ तपस्वी तो ब्रह्मा बाबा थे। मैं जब छोटा था, जब सोने हम जाते थे
जी,
सामने ही बाबा का रूम था, तो बाबा को योग मुद्रा में बैठा देखते थे
जी।
और जब हम उठते थे सवेरे, हम भी जल्दी उठते थे, तो भी बाबा को योग मुद्रा में बैठा देखते थे। दूसरी महान तपस्विनी हमारी मम्मा सरस्वती, हमारी दादियाँ जानकी दादी, कुमारका दादी, हृदय मोहिनी दादी, ये भी बहुत महान त्यागी और तपस्वी रही हैं। मैंने इन सब से ही प्रेरणा ली थी। और सच तो ये है, मुझे भी लोग मजाक किया करते थे, तुमने ज़्यादा पाप किए हैं क्या जो योग बहुत करते हो, क्योंकि योग से भी कर्म विनाश होते हैं।
जी जी,
मैं कहता था नहीं, योग प्रभु मिलन है, योग में परम आनंद है, भगवान के साथ रहने का सुख मिलता है इसमें। जैसे युधिष्ठिर की बात कही
जी,
ये निष्काम योग विश्व कल्याण का कार्य करता है, ये हमारे चित्त में गहरी शांति की शक्ति को जागृत करता है, जिससे हम बहुत बड़े बड़े जन कल्याण के कार्य कर सकते हैं। तो पहली अनुभूति थी ईश्वरीय आनंद।
प्रत्येक जैसे मैंने सुन रखा था और मैंने प्रारंभ भी किया कि 64 में ही जैसे संभवतः कोई किताब ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आपको प्राप्त हुई और वहीं आप बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए उसको पढ़ने के पश्चात, तो वही मैं जानना चाहता था कि आपको क्या लगता है कि ये ईश्वरीय शक्ति थी जिसने आपको तपस्या की ओर अग्रसर किया, या बाल्यकाल से ही आपने ये था कि मुझे तपस्या करनी है?
हाँ, मुझे बाल्यकाल से ये था कि मैं एक बहुत अच्छा योगी बनूंगा, इसलिए सन्यासियों की ओर मेरा बहुत आकर्षण होता था
जी।
तो जब मुझे राजयोग की पुस्तिका मिली तो मैंने उस अनुसार जो योग अभ्यास किया, तो तो फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट मोमेंट मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि प्रभु मिलन हो गया, और उस प्रभु मिलन की अनुभूति से यह आभास हुआ कि अब पवित्र जीवन जीना बहुत सुंदर और सहज रहेगा, क्योंकि मैं तभी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका था। पर मुझे ये लगता था ये प्रतिज्ञा सहज होगी या कठिन, लेकिन जैसे ही ये योगयुक्त होने का अनुभव हुआ तो ये सुंदर फीलिंग थी, नाउ इट्स वेरी इजी फॉर मी। तो इन दो अनुभवों ने मुझे आकर्षित किया
जी।
और बस लगन लगी कि जिसने ये किताब लिखी है, जहाँ से ये आई है, मैं उनसे जुड़ूं और इस योग अभ्यास को आगे बढ़ाऊं।
और जब भ्रता जी आप आए 68 में, जैसा आप हमेशा सुनाते हैं हमें, तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की बात आपने कही कि वो जैसे रात को भी सुबह भी, तो उनकी जीवन से तपस्या की किस प्रकार की प्रेरणा आपको मिली?
बस बाबा के पास जैसे ही हमारा प्रथम मिलन हुआ, बाबा ने दृष्टि दी तो मुझे बॉडी लेस कर दिया, और वो डीप साइलेंस की अनुभूति लंबा समय तक चली, और मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने वहीं मुझे वरदान दे दिया था सहज योगी भाव का। और मुझे शिव बाबा के सिवाय तो कुछ दिखाई नहीं देता था, जैसे परम धाम में महाज्योति चमक रही है और उस पर मेरी बुद्धि स्थिर है, लंबा समय वो स्थिति मेरी बन गई। ये मुझे बाद में पता चला कि वो तो उनके द्वारा दिया गया वरदान था।
और इससे शायद तपस्या के लिए और भी ज्यादा रुचि
लगन लग गई, और एक सुंदर मार्ग दिखाई देने लगा। और लगा क्योंकि मनुष्य को कन्विंस होने में बहुत समय लगता है, दिस इज गुड और दिस इज गुड, ये कन्फ्यूजन में रहना मनुष्य की आदत है जैसे। लेकिन मुझे वो कन्फ्यूजन तत्काल समाप्त हो गया और कहा दिस इज द राइट पाथ, बस फिर उसके हटकर और इधर उधर नहीं देखा।
तो भ्रता जी, जैसे कहते हैं तपस्या के मार्ग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तब से आपने तप करना शुरू किया तो बाधाएं भी बहुत आती हैं, तो मैं अपने दर्शकों के लिए जो साधना के पथ पे हैं उन्हें भी, और जो अब साधना की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी, ये जानना चाहूंगा कि किस प्रकार के विघ्न आपके मार्ग में, जैसे आपने चलना शुरू किया, एक लंबी यात्रा आपने तय की है, तो कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के विघ्न आए और आपने उन्हें कैसे जीता?
पहले 16 साल की जो मेरी यात्रा थी
जी,
समझो 68 से 69 शुरू से और 82, 83, 84 तक, ये बहुत ही सुखद थी, और इससे इसमें ही मैंने अनेक बातों को पार भी किया। और शुरू के एक दो साल मेरे लिए ऐसे थे जैसे मैं रिसर्च कर रहा था कि योग अभ्यास में कहाँ कठिनाई है, उनको कैसे दूर किया जाए। तो संक्षेप में एक छोटा अनुभव, मैं देखता था कि ये कमी मेरे सामने है, ये अगर दूर हो जाए तो बस मेरा मार्ग क्लियर। उस पर मैं मेहनत करता था, और मैं ऐसा अंदाजन कहूँ कि एक साल में मेहनत करता था, वो कमी दूर हो जाती थी, और फिर मुझ तो क्या होता था, दूसरी कमी उभर के सामने आ गई। फिर लगता था ये ठीक हो जाए तो बस आगे मैं बढ़ूंगा। फिर मैं उस पर मेहनत करता था और फिर वो कमी भी दूर हो जाती थी, लेकिन फिर तीसरी उभर कर आ जाती थी। इस तरह ये क्रम 16 वर्ष तक चला, तो मेरा योग अभ्यास भी बहुत सुंदर होता गया और उन कमियों से भी मेरी मुक्ति होती गई, जैसे अवगुणी दृष्टि, दूसरों के बारे में चिंतन, बहुत ज़्यादा फीलिंग आ जाना, बहुत इमोशनल होना, छोटी बात में संकल्प ज़्यादा चल जाना, थोड़ा बहुत भय रहना, ये सब, किसी ने कुछ कह दिया तो संकल्प ज़्यादा चलना, ये सब सामने आते गए और हटते गए। योग अभ्यास से बहुत अच्छी अनुभूति ये रही, इसको हम प्रभु कृपा कहें या योग का बल कहें, और तीसरी चीज अपनी एक लगन भी थी कि इन चीजों से हमें मुक्त होना है। तो 16 साल तक ये क्रम चला, और 16 साल में तो योग अभ्यास बहुत सुंदर रहा था
जी।
तो उसके बाद फिर ऐसा कोई आभास नहीं हुआ
कि संघर्ष हुआ, हाँ,
कोई संघर्ष है, प्योरिटी बहुत नेचुरल हो गई, सबके प्रति शुभ भावनाएं बहुत अच्छी हो गई, संपर्क संबंध में बहुत सरलता और प्रेम आ गया, तो एक लाइन बिल्कुल क्लियर।
दादा जी, आपने जैसे कहा कि 16 वर्ष लगे ये सारा करने में, अब हमारे पास तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सोचे 16 वर्ष तो उससे थोड़ा लंबा लगता है, क्या ऐसी संभावना है कि इस तपस्या वर्ष में ये सारी बातें यदि उभर के सामने भी आती हैं विघ्न रूप में, तो हम सहज रूप से इसे हमेशा के लिए दूर कर दें और जैसी निर्मलता, पवित्रता और स्वच्छता की अनुभूति आपने 16 वर्ष के बाद की, हम इस वर्ष के बाद करना शुरू करें।
बिल्कुल, ये सब संभव होता है क्योंकि एक समय को भी विशेष वरदान होता है और जब ईश्वरीय आदेश के अनुसार कोई समय दिया जाता है, जैसे ये समय दिया गया, तो उसमें शिव बाबा की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग और उनका कोऑपरेशन हम सबके साथ रहता है। तो अगर हम सच्ची लगन से अपनी कमियों को जानते हुए, ये बाधा इसको हटाना है, शिकायत करते हुए नहीं कि मुझे बहुत संकल्प चलते हैं, मन एकाग्र नहीं होता, कई लोग ये करते हैं, ये नहीं, मुझे संकल्पों को समाप्त करना है, मुझे चित्त को एकाग्र करना है, तो ऐसी आत्माओं को बाबा की मदद मिलती है और मिलेगी। और यदि कोई इस तरह लगन से आगे बढ़े तो एक वर्ष उनके लिए बहुत सुंदर वरदानी वर्ष बन जाएगा और वो अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हो जाएंगे।
बिल्कुल। तो प्रताप जी, आपने जैसी साधना इन 16 वर्षों में की, क्या संक्षेप में आप बताएंगे कि क्या क्या आपने साधना की थी जिसे इस वर्ष में सभी अपने प्रोग्राम में शामिल करें?
मुझे बहुत अच्छी एक अनुभूति थी कि सुप्रीम गाइडेंस मुझे मिलती थी। उन दिनों हमारे यहाँ यज्ञ में संदेशी बहनें होती थी जो ट्रांस मैसेंजर होती थी, तो डेली जो दो टाइम भोग लगता था बाबा को, हम भोग ऑफर करते थे लंच का और डिनर का, तो वो संदेशी बहनें ध्यान में जाकर शिव बाबा का संदेश लाती थी और वो मेरे लिए बहुत सुंदर गाइडलाइन होती थी। भिन्न भिन्न तरह के योग अभ्यास उसमें जानने को मिले, मन को कैसे हल्का रखें, ये बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। योग में तत्कालीन समय जो मुझे बाधाएं आ रही हैं उसकी गाइडलाइन मुझे बाबा से मिलती थी, अब ये करना है, तो वो एक बहुत सुंदर गाइडेंस मिलती गई। अभी वो हमने वर्णन किया पिछली तपस्याओं के जो एपिसोड किए हैं
जी, जी।
वो वही थे जो ट्रांस मैसेंजर सिस्टर्स के द्वारा हमें प्राप्त हुए थे। तो उनको यदि सब अभ्यास मिलाएंगे कि सवेरे किस तरह का अभ्यास किया जाए, कर्म करते किस तरह का अभ्यास किया जाए, दिनचर्या को कैसे बिताया जाए, योग को बहुत इंटरेस्टिंग और रुचि पूर्ण बनाने के लिए क्या क्या अलग अलग तरह के अभ्यास किए जाएं ताकि मन बोर न हो, और मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए और क्या क्या किया जाए, वो सब एक सुंदर गाइडलाइन मिली जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो उससे बहुत फायदा होता है, योग में रुचि बनी रहती है, बोरियत नहीं होती, और योग के अनुभव निरंतर हमें गाइड करते हैं। सत्य बात यही है कि जो भी योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं वो योग अभ्यास करें, होने वाले अनुभव और ईश्वरीय महावाक्य दोनों से गाइडलाइन मिलती जाएगी और निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे।
बिल्कुल प्रताप जी, एक चीज़ आपके अनुभवों के साथ मैं जानना चाहूँगा, अभी जैसे जैसे वक्त निकलता चला जा रहा है, अब हम जैसे फरवरी में पहुँच गए हैं, तो कई बार कार्यों की अधिकता के कारण हमने जो प्लान किया है ना उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी सी निराशा कई बार मन में आ जाती है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, यहाँ क्या राय देंगे?
मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि वो प्रायोरिटी किसको दे रहा है, वो योग अभ्यास को दे रहा है या उस कार्य को दे रहा है, और क्या उसके पास ऐसा ज्ञान है कि अगर हमारा योग अभ्यास अच्छा होगा तो कार्य सरलता पूर्वक संपन्न हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ये अवेयरनेस है। तो एक अच्छे पुरुषार्थी को अपने लिए थोड़ा थोड़ा समय अवश्य देना चाहिए। मैं एक जनरल बात कहूँगा, सवेरे उठकर अच्छा योग करें, जिसकी चर्चा हमने की है, दिन में 3 बार 20-20-20 मिनट बैठकर योग अभ्यास करें। देखिए, एक ही घंटा है, निकालना पड़ेगा, सवेरे कोई भी टाइम फिक्स कर लें, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, दोपहर में कर लें 11, 12, 1, 2, 3, इवनिंग में कर लें 5, 6, 7, 8। तो 20 मिनट बैठकर ऐसा अभ्यास करें, पहले 20 मिनट मुझे शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं, दूसरे 20 मिनट शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाने हैं, तीसरे 20 मिनट प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। 4 बार ये योग हो जाएगा, 3 बार 20-20 मिनट और मॉर्निंग में, ये 4 बार का योग काफ़ी अच्छी प्रेरणा देगा, रस पैदा करेगा, एकाग्रता को बढ़ाएगा, और फिर कर्म करते भी मनुष्य अच्छा योग अभ्यास कर पाएगा। ये सिंपल विधि यदि हर व्यक्ति अपना ले तो उसे ज्यादा कठिनाई नहीं होगी।
जी जी जी। और कई बार ये सोच लेता है कि एक साथ मैं निकाल के बैठूं तो शायद वो उसके लिए कठिन हो जाता है, या आपने सिंपल बहुत कर दिया है कि 15 मिनट या 20 मिनट निकाल के बैठे, लता जी, जब आपने शुरुआत की थी, मैं पुनः वहां आना चाहूंगा, क्या आपने कुछ ऐसे सिद्धांत अपने लिए बनाए थे जिसने आपके योग को बढ़ाने में मदद की है या आपको तपस्या में बहुत गहराई में डूबने में मदद की?
हाँ, मैं इनकी चर्चा कर चुका हूँ पहले। 10 सिद्धांत मैंने अपने बनाए थे। और सिद्धांत क्या बनाए थे, मैं ऐसा सोच लिया था कि मैं इन 10 बातों में अपने जीवन को बांध रहा हूँ, इनसे इधर उधर मुझे नहीं होना है। मैंने देखा जो चीज ईश्वरीय आज्ञाएं हैं, कुछ चीज ऐसी हैं जो योग मार्ग में बाधक हैं, कुछ चीज ऐसी हैं जो मन बुद्धि को विचलित करती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने 10 डिसिप्लिन्स बनाए अपने लिए। और उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ। उसमें जैसे एक था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, किसी से अननेसेसरीली किसी बात पे डिबेट नहीं करेंगे। मॉर्निंग योग और ईश्वरीय महावाक्य सुनना, जिसको मुरली कहते हैं, उसको मिस नहीं करेंगे। किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, सेवा के फील्ड में कभी ना नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे सिद्धांत जिन्होंने जीवन में बहुत बल दिया और मनुष्य आत्माओं की, बड़ों की और परमात्मा की ब्लेसिंग्स बहुत प्राप्त हुई। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये ब्लेसिंग्स योग युक्त होने के लिए परम आवश्यक भी हैं।
वर्तमान समय को देखते हुए भ्राता जी, ये बात तो खैर 69-70 की थी जब आपने शुरुआत की थी, आज का दौर पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। तो जो संसार में रह रहे हैं हमारे भाई बहनें, उनको देखते हुए और सिचुएशंस को देखते हुए, यदि आप कोई 5 सिद्धांत उनके लिए सजेस्ट करना चाहें कि यदि ये 5 सिद्धांत आप अपना लें, इस तपस्या वर्ष में आपको तपस्या करने में बहुत मदद मिलेगी।
पहला सिद्धांत तो यही होगा कि जो ब्रह्म मुहूर्त का योग है हमारा, उसमें हम अलबेले नहीं बनेंगे। दूसरा, ईश्वरीय महावाक्यों को बहुत लगन से, बहुत रुचि से हम सुनेंगे, उनको अपने जीवन में धारण करने का अभ्यास करेंगे। तीसरा सिद्धांत हम बना सकते हैं कि हम इधर उधर नहीं देखेंगे। इधर उधर देखने का बहुत बड़ा रहस्य है। मनुष्य अननेसेसरीली चिंतन करता है, इसको देखो, वो ऐसा कर रहा, फलाना ऐसा कर रहा, क्यों, क्या में उलझ जाता है। नो, एक तरफ ही देखेंगे अर्जुन की तरह। ये तीसरा हम बहुत सुंदर सिद्धांत बना सकते हैं। और चौथा बना सकते हैं कि बहुत अंतर्मुखी रहेंगे, ज्यादा वाचा में नहीं, ज्यादा व्यर्थ में नहीं, एक त्याग से भरपूर जीवन और बहुत अंतर्मुख। और पांचवा सिद्धांत बनाए हम अपनी प्योरिटी के लिए, जो मैंने बनाया था। और ये बहुत सुंदर बात थी, क्योंकि तब हम छोटे थे, यंग थे
जी।
एक बार पवित्रता के पथ पर कदम रख दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, चाहे हमें कितना भी सहन करना पड़े, गाली खानी पड़े, संघर्ष हो, लेकिन भगवान को वचन दे दिया पवित्रता का, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो प्योरिटी का बल, ब्रह्म मुहूर्त का बल और ये अंतर्मुखता का बल हमें योग युक्त होने में बहुत मदद करेगा।
गृहस्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको नहीं लगता रहता जी, कि ये जो पांचवा सिद्धांत है पवित्रता का, जो घर गृहस्थ में है, एक साथ ही मान लीजिए पत्नी चल रही है, पति नहीं चल रहे हैं, या पति चल रहे हैं पत्नी नहीं चल रहे हैं, तो ये शायद तपस्या को और ज्यादा भंग करेगा या और ज्यादा परेशानी बन जाएगा?
नहीं, ये बात तो सत्य है
जी।
महात्मा गांधी के सामने भी लोग ये प्रश्न लेकर आते थे, मुझे बात बहुत अच्छी लगती थी महात्मा जी की
जी।
कि महात्मा जी, मैं, मेरी पत्नी तो मानती नहीं, मैं कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करूं? तो महात्मा जी का उत्तर होता था, तुम देश को स्वतंत्र कराने चले हो, अगर तुम में इतना बल नहीं है तो जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो मैं इतनी कड़ी बात तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ईश्वरीय आज्ञा है
जी,
पवित्र बनो। ये तो सत्य है कि साथी का साथ होना परम आवश्यक है, पर यदि साथी साथ नहीं दे रहा है तो हम अपना मार्ग स्वयं चुने, क्योंकि अपना भाग्य बनाने के लिए हर व्यक्ति पूर्णतया स्वतंत्र भी है। और यदि मनुष्य ऐसा करता है तो उसे ईश्वरीय सहयोग भी मिलता है, और एक बुद्धिमान मनुष्य को अपने साथी को कन्विंस करना भी आ जाता है
जी। जी, चलिए, हमारी भी कामना रहेगी भ्राता जी कि सभी इस सुंदर सिद्धांत पे चलें और तपस्या को गहराई की ओर ले चलें। व्यक्तिगत प्रश्न भ्राता जी, इस तपस्या वर्ष में सभी के लिए तो बहुत सुंदर चर्चा हुई है, व्यक्तिगत तौर पे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या मतलब कर प्लानिंग क्या है आपकी, किस तपस्या वर्ष में मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, या संसार के लिए ये करना है, आपकी क्या प्लानिंग?
देखिए, मैंने एक हायर कॉन्शियसनेस, जो मुझे एक संकल्प रोज रहता है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है, मुझे सबके दुख दूर करने हैं, मुझे संसार के काम आना है, मुझे सबको गुड वाइब्रेशंस देने हैं, मुझे प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, इसलिए मैं अलबेलेपन में नहीं रह सकता हूँ। तो मेरा सारा ही दिन कुछ ना कुछ अच्छा अभ्यास चलता रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में भी, मुरली के समय भी, और सारा दिन मिलते हुए सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना, स्वमान की दृष्टि से देखना, और जो योग के भिन्न भिन्न अभ्यास हैं जिनकी हम चर्चा कराए हैं वो सब मेरे चलते रहते हैं, तो मुझे बहुत संतुष्टि रहती है।
प्रदा जी, पहले भी हमारी एक चर्चा हुई थी और एक बात निकल के आई थी कि तपस्या से हमारे आंतरिक गुणों का विकास होने लगता है, और मैंने सुन रखा है कि आपके तो विशेष गुणों का विकास परमात्मा ने आपको बहुत वरदान के रूप में दिया, और खास करके गीतों की रचना के रूप में। एक प्यारा सा गीत मैं योग से जुड़ा हुआ सुन रहा था कि योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, और जब मैंने ये सुना कि ये रचना आपने की है तो मेरा मन तो और बाग बाग हो गया, और मैंने सोचा आज तो ये गीत हम जरूर आपसे सुनेंगे और हमारे दर्शक भी सुनना पसंद करेंगे।
देखिए, गीत तो बहुत पहले लिखा था, शायद मैं तब अपने अहंकार को पूरी तरह नष्ट करने के लिए
जी
बहुत ज्यादा प्रयासरत था, तो मैं गीत अपने अनुभवों के ही लिखता था।
वो गीतों के शब्दों से लगता है कि शायद अनुभव युक्त लिखा हुआ है।
तो बहुत अच्छा था, तब ये सबको बहुत पसंद आया और लोग इसको बहुत बजाया करते थे
जी।
क्योंकि बात बहुत साल पहले की है, 35 साल पहले की होगी, तब हमारे यहाँ बहुत सारे गीत तो नहीं थे। अब मुझे पूरा गीत तो याद नहीं, लेकिन पहली लाइनें याद हैं
जी,
मैं कोशिश करता हूँ। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब संवारा हो, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो।
ऐसे सुंदर, बहुत ही सुंदर, कितने भावपूर्ण हैं और सच्चे कितने प्रेरक हैं। दादा जी, ऐसे भी और भी बहुत सारे गीत आपने लिखे हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे वो गीत कौन कौन से हैं ऐसे, और उनके मुखड़े, क्योंकि वो उनमें जरूर मुझे लगता है कि अनुभव जरूर आपके समाये हुए होंगे।
हाँ, उस टाइम एक बहुत अच्छी लगन रहती थी, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, उलझे हुए मानव को हम राह दिखा देंगे, ये भी गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था
जी जी।
इस पे लोग नाव बनाया करते थे और इस गीत को गाया करते थे।
हाँ,
ऐसे बहुत सारे गीत थे, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, आबू तीर्थ सबसे अच्छा है, उस पर भी एक गीत बनाया था, क्योंकि उस टाइम और कोई लिखने वाले नहीं थे, तो हम लोग ही लिखा करते थे और वो अच्छे लगते थे लोगों को।
जी जी जी। तो राधा जी, क्या ऐसा लगता है कि यदि हम तपस्या करते हैं और तपस्या के साथ साथ इनका आह्वान करना होता है तो ये जागृत हो जाते हैं, या फिर हम तपस्या करते हैं तो जब परमात्मा को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो खुद ब खुद हमारे अंदर इमर्ज कर?
दोनों चीजें होती हैं, हम इनका आह्वान भी करेंगे यानी संकल्प भी करेंगे कि हमें गीतों की रचना करनी है, और फिर गॉडली ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ होती है क्योंकि हम योग करते हैं, और इस तरह बहुत सफलता होती है हर टैलेंट्स को अपने अंदर जागृत करने में।
प्रदा जी, आज के आपके जो सुंदर अनुभव रहे हैं मुझे तो बहुत प्रेरित किए, और साथ ही हमारे सभी दर्शकों ने भी भरपूर आनंद लिया होगा आपके गीत का भी, और साथ ही तपस्या से जुड़ी हुई जो गहरी बातें हैं, सिद्धांत हैं, वो भी अपने जीवन में जरूर बनाएंगे। सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जब हम अनुभव सुनते हैं तो सचमुच हमें भी लगता है कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें आदर्श की और प्रेरक की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक राह यदि बना हुआ हो उस पर चलना बहुत सहज हो जाता है, यदि राह ना बना हुआ हो और उसे बनाना पड़े तो शायद बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। आदरणीय भ्राता जी भी, और साथ ही भ्राता जी जैसे कह रहे थे कि इस विद्यालय के जो साकार संस्थापक थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती, हमारी आदरणीय जो दादियां हैं, उन सबका जीवन सचमुच तपस्या से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण रहा है। त्याग, तपस्या और सेवा की वो प्रतिमूर्ति रहे हैं, और सचमुच जैसे वो विश्व गगन में चमक रहे हैं वैसे ही हम भी तपस्या के माध्यम से अपने आप को चमका सकते हैं। और बहुत सहज है ये करना, क्योंकि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो पहले तो हमें कठिन लगता है, लेकिन जब हम चल पड़ते हैं ना तो उसका जो आनंद आता है, रस आता है, वो हमें प्रेरित करता है कि और आगे बढ़ें। तो ये तपस्या वर्ष है, तो हम सब भी अपनी तपस्या को बढ़ाएं, साथ ही अपने अंदर की विकृतियों को दूर करते चलें। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।